हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। प्रार्थना में भाग लीजिए। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत हस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे गुरवे गौरचंद्राय राधिका तदाल्ये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नामनि गौरात्वेशे नमः। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतं एको देवो देवकी पुत्र एव एकं मन्त्रं तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा वाञ्छाकल्पतृभ्यश्च कृपा सिन्धोभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र की राय गौर प्रेमानंदे। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ संस्थापक आचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणार भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की अपार कृपा से परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज के नेतृत्व में भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली और भगवान का ससुराल भी है उज्जैन मित्रा बिंदा। यहां से भगवान आठ पटराणियों में एक ले गए थे, तो भगवान श्री कृष्ण का इस अवंती का पुरी से सात पुरियों में एक पुरी भी है, बहुत घनिष्ठ संबंध है। और महाराज श्री ने यहाँ श्री प्रभुपाद जी की प्रसन्नता और वैष्णव प्रसन्नता के लिए श्री राधा मदन मोहन भगवान का दिव्य मंदिर अवंतिका और पूरे मध्य प्रदेश के गौरव के रूप में यहाँ प्रतिष्ठित किया है। और वार्षिक भगवान श्री जगन्नाथ का रथ यात्रा, जो भगवान श्री कृष्ण बहुत दयामय करुणामय अपने भक्तों के ऊपर और भक्तों के विरह में भगवान का ये रूप प्रकट हुआ है, तो भगवान अपने प्रिय भक्तों को दर्शन देने के लिए ऐसा एक ही अचल विग्रह, वैसे जो भी विग्रह स्थापित किया जाता है मंदिर में वो अचल विग्रह होता है। ये जगन्नाथ जी एक ऐसे दारू ब्रह्म है, लकड़ी के रूप में भगवान का प्रकट्य है, जो कलयुग में 10,000 साल पति तपावन तो रहेंगे, लेकिन ये हर साल बाहर निकल के भक्तों को दर्शन देते हैं। जो अंदर भगवान का दर्शन करने में किसी कारण से सफल नहीं होते हैं, भगवान ही उनके ऊपर कृपा बरसाने आते हैं। तो वार्षिक रथ यात्रा के उत्सव के अंतर्गत ये चौथा साल है हमारी सेवा, भगवान जगन्नाथ राधा मदन मोहन और भक्त वैष्णवगण ये सौभाग्य सेवा का देते हैं, धन्यवाद करते हैं मंदिर संचालन वाले सारे भक्तगणों का, विशेष रूप से मंदिर का संचालन करने वाले अध्यक्ष उपाध्यक्ष और नाम से केशव प्रभु जो रथ यात्रा के कार्य को देखते हैं फेस्टिवल का, उनका धन्यवाद करते हैं। और आप भगवान श्री कृष्ण की भगवत वाणी, भगवान के मुख की वाणी, उसके श्रवण करने के लिए काम वाले दिन में और 11:30 बजे भी आप पधारे हैं, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। गत वर्ष हमने भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता अमृतम महत सर्वोपनिषदो गावो दोगदा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता गीता अमृतम महत। अगर सारा वैदिक साहित्य गाय का रूप धारण कर ले तो गाय का अमृत है दूध, ऐसे सारे वैदिक साहित्य का, सारे वैदिक साहित्य ने मानो गाय का रूप धारण कर लिया है, तो गाय का अमृत दूध है। ऐसे ही भगवत गीता का अमृत सारे वैदिक साहित्य का सार है, लेकिन जब सबने उपनिषदों को गाय कह दिया तो गाय का दूध अपने आप गाय नहीं देती है किसी को, गाय का दूध बछड़े के लिए होता है। और गाय को वत्सला कहते हैं, वत्सला, और बछड़े को वत्स कहते हैं, जो बछड़े के प्रेम के कारण उसका हृदय पिघल के दूध बन जाता है और बछड़े के लिए ही गाय का दूध होता है। तो यहां अगर वेद सारे उपनिषद गाय बन गए हैं तो कौन उसके लिए योग्य बछड़ा हो जिसके लिए वो दूध अमृत के रूप में प्रकट हो। गाय बगैर बछड़े के दूध नहीं देगी, और फिर गाय के दूध निकालने वाला भी कोई बहुत बड़ा प्रवीण हो तो कहते भगवत गीता उपनिषद रूपी गाय के दोहन के लिए गोपाल नंदन। गोपाल नंदन मतलब नंद नंदन, भगवान श्री कृष्ण जो गोपाल बाबा नंद, जिसकी कोटि गाय, करोड़ों गाय जिसकी थी, और जो गोपाल के नाम से प्रसिद्ध है, वो गाय का दूध निकाल रहे हैं। अरे गाय का दूध तो निकाल रहे हैं, मुख से प्रवाह कर रहे हैं, लेकिन बछड़ा कहाँ है? बोला पार्थो वत्स, पार्थ ने बछड़े का भूमिका निभाई। इसका अर्थ ये है जब तक कोई भक्त नहीं होगा तब तक भगवत का अभाग, भगवत गीता का अमृत प्रवाह नहीं होगा। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कम से कम भक्त बनेंगे तो भगवत गीता से कुछ लाभ पाएंगे। तो अर्जुन वत्स बना है और फिर गीता अमृत महत, ये गीता का महत अमृत। सुधीर भोक्ता, जो धीर है, धीर कहते हैं भगवत गीता के शब्दों में, मात्रा स्पर्शासन देहि नोस्मिन यथा देहि कौमारम यौवनम जरा तथा ध्यानत्र प्राप्त धीरज तत्र नमोयते। धीरज उसको, उसको धीर, धीरज वो धीरजवान पुरुष वो है, धीर पुरुष वो है जो संसार में शरीर के परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता है लेकिन आत्म चिंतन में लगा रहता है। तो शरीर के परिवर्तन में, भोग विलास में जिसकी रुचि नहीं है, जो आत्म चिंतन में और भगवत संबंध के संपन्न करने में लगा है उसको सुधीर कहते हैं। जिसको दुनिया की कोई भी लोभ लालच आकर्षित नहीं कर सकती है, जिसको स्वर्ग की अप्सरा भी प्रभावित न कर से, जैसे अर्जुन को स्वर्ग की अप्सराओं ने कहा और उन अप्सराओं ने अर्जुन को कहा आप जैसा पुत्र चाहिए, अर्जुन के मैं ही आपका पुत्र हूं, मुझे पुत्र स्वीकार कर लो। इतना बड़ा जो संयमी हो, उत्तरा को सिखाते थे जब अर्जुन विराट राज में नृत्य, तो जब कौरवों ने गौधन को चुराया और अर्जुन ने उत्तर कुमार के साथ जाके अकेले सारी कौरव सेना को पराजय किया, तो महाराज विराट को पता लगा ये अर्जुन है, तो उसने कहा मेरी पुत्री आपको विवाह के देता हूं। और ये सुधीर अर्जुन कहता है जो मेरी शिष्य है वो मेरी पुत्री के समान है, उसके साथ विवाह करना मर्यादा नहीं है। जो इतना धीरजवान हो, सुधीर, धीर नहीं केवल सुधीर, इतना जिसमें धीरज हो, भोग जिसको स्वर्ग का भी आकर्षित न कर सके, वो इस भागवत अमृत को, भक्ति के अमृत को, चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन के अमृत का रस आस्वादन कर सकता है। ऐसे हमारी परंपरा में रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए उनके पिताजी कहते हैं कि जिसको इंद्र के जैसा वैभव और अप्सरा जैसी पत्नी बंधन में नहीं बांध डाल सकती है, उसको रसों से बांध के कैसे रोक सकते हैं। ये रघुनाथ दास गोस्वामी जो हमारे प्रयोजन आचार्य हैं, भगवत कृष्ण प्रेम के आचार्य, वैराग मूर्ति है, वैराग विद्या के आचार्य हैं, राधा कुंड पे जिनका भजन स्थली है, वो अकेले बड़े धनवान पिता और चाचा के अकेले लड़के थे, लाखों चांदी की स्वर्ण की मुद्राएं की आय थी, विवाह कराया था लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन के नाम अमृत में ऐसा रुचि थी कि उनको बांधने का प्रयास किया, तो पिताजी ने ये शब्द कहे थे, इंद्र के समान वैभव और स्वर्ग जैसी अप्सरा जिसको बांध नहीं सकती है, उसको दुनिया के रसे कैसे बांध सकते हैं। सो गीता के अमृत पान करने के लिए भोग से जो अपने आप को ऊपर उठा लेता है, वो भाग्यवानी गीता के योग को सार्थक कर सकता है। भोग और योग दोनों साथ नहीं चल सकते हैं, और गीता को योग शास्त्र कहते हैं। योग शास्त्र का मतलब भगवान से संबंध स्थापित करने वाला शास्त्र। और श्री प्रभुपाद जी तो कहते हैं कि अब कलयुग के लोगों के पास समय नहीं है, कहते हैं बहुत सारे शास्त्र हैं, कितने पढ़ें, किसकी पूजा करें, कौन सा मंत्र जपें, किसकी सेवा में लगें। तो प्रभुपाद जी कहते हैं देखो ये गीता महात्म्य महात्म्य का श्लोक आपको मार्गदर्शन करता है, कर रहा है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र जिसका आप आश्रय ले लें तो भगवान देवकी नंदन के मुख से जो कुरुक्षेत्र के रणभूमि में अपने प्रिय भक्त अर्जुन के लिए भगवान ने अपना हृदय खोल के और उसके अंदर ये गीता का प्रवाह जो निकला है, ये गीता शास्त्र एक सर्वोपरि है और सारे शास्त्रों का सार है, और जो सब शास्त्रों में है वो तो इसमें है, और जो और कहीं नहीं है वो भी आपको इसमें मिलेगा। तो इसलिए एक ये शास्त्र अपने आप में परिपूर्ण है, केवल 700 श्लोकों का ये सारभूत शास्त्र है। और एक ही भगवान की पूजा करनी है, एको देवो देवकी पुत्र एव एक भगवान श्री कृष्ण। जिसके लिए सारे ऋषियों ने, सारे देवताओं ने उनकी महिमा गाई है, जो भगवान जगत गुरु के नाम से प्रसिद्ध है, वंदे कृष्ण जगत गुरुम। ये समष्टि जगत गुरु है, समष्टि का मतलब सबका जगत गुरु है, क्योंकि सबको गीता का उपदेश दिया और गीता जगत गुरु के मुख का प्रवाह है। और ऐसे जगत गुरु का प्रथम शिष्य सूर्य देव है, और ये सूर्य देव जैसे सबके कल्याण के लिए प्रकाश नित्य देता है, पूरे विश्व को देता है, सोए को जगाता है, जीवन देता है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण का ये गीता का उपदेश सार्वजनिक है, पूरे मानव मात्र के लिए है। ये मे मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः। भगवान कहते हैं ये जो मेरा भगवत गीता का मत है, ये मानव मात्र के लिए है, किसी विशेष देश के लिए नहीं है, किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है, किसी विशेष काल के नहीं है, ये सार्वजनिक है, सार्वभौमिक है और सर्वकालीन है। ये मेरा भगवत गीता का मत। और भगवान ने सूर्य देव को गीता का उपदेश देकर गीता की सार्वजनिकता, विश्वव्यापकता, यूनिवर्सल एप्लीकेशन का की प्रतिष्ठा की है। और जिसका अनुभव और जिसका सही माना में प्रतिपादन श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणार भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा विश्व के सारे भाषाओं में इस भगवद गीता का यथारूप का अनुवाद और विश्व के कोने कोने तक भगवद गीता का संदेश पहुंचाने का श्रेय ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। ये है भगवद गीता को इसलिए यथारूप कहते हैं कि भगवान के भाव को समझ लिया कि ये विश्व के लिए है, किसी जाति के लिए नहीं है, घर में पढ़ने के लिए नहीं है, मरने के पीछे वालों को हाथ लगा के दान करने के लिए नहीं है, ये तो विश्व को, ये विश्व का भगवान श्री कृष्ण क्रांतिकार है, बहुत बड़े क्रांतिकार है, उन्होंने विश्व की क्रांति की है भगवद गीता के माध्यम से। जो उपनिषदों का ज्ञान ऋषि लोग अरण्य में बैठ के, वन में बैठ के शिशुओं को देते थे, उस ज्ञान को रणभूमि में दे दिया। रणभूमि में अरण्य के ज्ञान को देने का भगवान श्री कृष्ण का ये आविष्कार बहुत बड़ा आंदोलन है, अपने आप में ये क्रांति है। और जो पूजा यज्ञ कुंड में हो, उसको लाके आपके दुकान पे, मकान पे, घर में भगवान ने खड़ी कर दिया, यद करोसि यद अर्चसि यद जहोसि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तद कुरुष्व मदार्पणम्। अब कहीं भी हो आप कृष्ण अर्पण करो तो आपकी भक्ति हो गई, आपका वो कार्य है भगवान की सेवा में लग गया। तो वो ऐसी पूजा पाठ की विधति को, और इतना बड़ा क्रांतिकार समय, उस समय में नरकासुर के कैद से 16,100 राजकुमारियां कह रही हैं, रोके श्री कृष्ण आपने हमको इससे तो मुक्त कराया, लेकिन समाज में हमको स्वीकार कौन करेगा, हमारे परिवार वाले अपहरण की हुई लड़की को कोई सम्मान तो करेगा नहीं, और यहां और कोई हमको स्वीकार नहीं करेगा, अब हम जाएं कहां। भगवान ने कहा आप कह रही हैं आपका कोई नहीं है, जिसका कोई नहीं है उसका मैं हूं, आप सबको मैं स्वीकार करता हूं बड़े सम्मान के साथ, आप चलिए द्वारका की रानियां बना देता हूं आपको। ये उस वक्त के विचारों में भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी क्रांति है, जो प्रचलित उस वक्त में जो रस्में चल रही थी, जो कल्चर था, उसमें बहुत बड़ी क्रांति है। सो श्री कृष्ण क्रांतिकारी है, और उनकी क्रांति का सबसे बड़ा अनोखा ये भगवद गीता का उपदेश है। और ये ऐसा शास्त्र है जिसके ऊपर हर देश के विद्वान ने इसको जानने का प्रयास किया है, समझने का प्रयास किया है, और हर जाति के व्यक्ति ने और हर फेथ वाले ने, संसार के अंदर बहुत सारे फेथ हैं, धर्म तो एक ही है, धर्म तो एक ही है, भागवत धर्म जो भगवान ने दिया है। बाकी जितने भी फेथ हैं, या जिसको फेथ मजहब की डेफिनेशन, रिलीजन की डेफिनेशन है फेथ, उन सब फेथ के लोगों ने, उन सब विशेष धारणा वाले लोगों ने भगवत गीता को किसी न किसी तरीके से समझने का प्रयास किया है। तो ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन भगवत गीता की है। तो गत वर्ष अपन ने यहां, मैं समझता हूं छठे अध्याय तक हमारा भगवत गीता का अध्ययन हुआ था। क्या विचार है आपका, कहां तक पहुंचे थे, किसी को याद है? छठे इसका पूरा हो गया था छठा? तो पहला जो अध्याय है उसमें दो विभाग हैं। पहले विभाग का नाम है सैन्य दर्शन, जिसमें सेना का दर्शन दुर्योधन के मुख से द्रोणाचार्य के प्रश्न के अंतर्गत और धृतराष्ट्र के प्रश्न के अंतर्गत संजय कह रहे हैं सैन्य दर्शन, ये चलता है 24वें श्लोक तक। 25वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आधा श्लोक बोलकर और सैन्य दर्शन से अर्जुन के विषाद की ओर मोड़ते हैं पहले अध्याय के चर्चा को। 25वां श्लोक जो पहले अध्याय का है वो टर्निंग पॉइंट है, उसमें एक ट्विस्ट आता है, एक मोड़ आता है। क्योंकि तब तक तो सेना का दर्शन और अर्जुन का, मैं अब बस मेरे रथ मेरा खड़ा करो, मैं देखता हूं कौन मेरे से लड़ने आया, मेरा धनुष उठाता हूं और सब तैयारी करके भगवान को लाके रथ बीच में खड़ा भी करा दिया, भगवान की परीक्षा भी ले ली कि मेरा आज्ञा पालन करेगा कि नहीं करेगा, सारथी बना है एक दृष्टि से। लेकिन जब वहां बीच में खड़ा हो गया तब भगवान ने बोलना शुरू किया। भगवान ने क्या बोलना शुरू किया, अर्जुन के हृदय में भगवान ने मोह को स्थापित किया। अर्जुन के हृदय में मोह नहीं था, अर्जुन भगवान का नित्य पार्षद है, उसके ऊपर कोई माया का मोह नहीं हो सकता है। लेकिन भगवान ने अपनी योग माया से अर्जुन को मोहित किया, क्योंकि भगवान को भगवत गीता देनी थी। तो आधा श्लोक जो भगवान के मुख से निकला है, पश्य पार्थ कुरुनिति, अर्जुन देखो ये सामने भीष्म है, द्रोण है, बाकी सारे आपके मामा चाचा भाई ये कौरव ही खड़े हैं। और इस श्लोक के बाद अर्जुन ने युद्ध न करने के कई कारण बताना शुरू कर दिया और संजय ने शब्द का अर्जुन को विषाद हो गया। तो आधा पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग है। दूसरे अध्याय में जब विषाद हो और भगवान के सामने कोई रहे रोना शुरू करे तो भगवान का प्रसाद प्राप्त होता है। दूसरा अध्याय असल में भगवान का प्रसाद है और भगवत गीता भगवान का प्रसाद है। और दूसरे अध्याय में श्रील प्रभुपाद ने लिखा है कि पूरी गीता का सार भगवान ने संक्षेप में दे दिया। तो गीता का सार संक्षेप में है, जिसमें फिर मुख्य श्लोक सातवां है, जिसमें अर्जुन की शरणागति है। कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव प्रच्छामि त्वं धर्म समूल चेता यत्सर सुनिश्चितं ब्रवी तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वं परपनम। अगर जीवन में कोई श्रेय चाहता है तो फिर शरणागति अनिवार्य है। आपको जीवन में अगर श्रेय चाहिए तो शरणागति अनिवार्य है और भगवान का शरण भगवान के शुद्ध भक्तों के माध्यम से लेना पड़ेगा, नहीं तो श्रेय जीवन में नहीं हो सकता है। यत् श्रेय है और फिर क्या है, शिष्यस्ते हम। तो प्रिय तो अपनी मर्जी से कुछ भी करना चाहो तो कर सकते। लोग कहते हैं हमारी मर्जी, हम जैसे करेंगे, हमको जैसे अच्छा लगे करेंगे। एक महात्मा कहा करता था, अरे मूर्ख हो, तुम्हारे बस में है क्या, तेरा बस क्या तुम्हारे बाल के ऊपर चलता है, उसको बोलो काला काला रहे सफेद नहीं हो, तेरा बाल तो तुम्हारी मानता नहीं है, गिर जाता है वापस तुमसे लगता नहीं है, तुम्हारी चलती कहां है बताओ।
लोग कहते हैं हमारी मर्जी जैसे करें, तुम्हारी मर्जी से तुम्हारे बाल भी नहीं काले रह सकते हैं, सफेद पक जाते हैं, तुम रोक के दिखाओ।
एक राजा की सवारी आ रही थी, एक संत सोया हुआ था, बड़ा मस्त संत था। सबने कहा हटो, राजा की सवारी आ रही है। बोला राजा क्या होता है? बोला ये सारा देश उसके आदेश से चलता है। बोला उसके ऊपर उसका आदेश सबके ऊपर चलता है? बोला हाँ बिल्कुल चलता है। बोला कोई बात नहीं, मैं साइड में खड़ा होता हूँ, राजा से पूछता हूँ। राजा की सवारी आई तो बोला महाराज प्रणाम। महाराज ने कहा गुरु हे साधु महात्मा आपको प्रणाम। बोला मैंने यही कह रहे हैं कि आप राजा हो, आपका कहना सब मानते हैं। बोला ऐसे तो मानते हैं सब कहना हमारा, हम राजा है तो राज का कानून चलता है। बोला ये मच्छर रोज मेरे को परेशान करते हैं, इस मच्छरों को कहो यहां से चले जाएं। राजा बोलते मच्छर तो मेरे कहने से नहीं जाएंगे। बोला फिर किस बात के राजा हो, मच्छर तेरी मानता नहीं है, फिर आदमियों को मूर्ख बना रहे हो कि मैं सबका राजा हूं। तेरा अपना तो हो, मच्छर के ऊपर तो चलती नहीं है तेरी, तो किस बात के तुम राजा हो। तो ये दुनिया में जो मूर्ख कहते हैं हम क्या पढ़ेंगे भगवत गीता, हमें जो अच्छा लगा वो करेंगे। अरे तेरे को अच्छा क्या लगेगा, तू दो मिनट सांस तो रोक के दिखा, तेरे बस में है क्या। वो एक आदमी कॉकरोच को मार रहा था, तो कॉकरोच ने कहा तू भले मेरे को मार, मैं मानता हूं कि तुम मुझसे ईर्ष्या करते हो, क्योंकि तेरी पत्नी मुझसे डरती है और तुमसे नहीं डरती। काकरोच कहता है तेरी पत्नी मुझसे डरती है, काकरोच कहता तुमसे नहीं डरती इसलिए तुम मेरे को मार रहा है। तो डरने को काकरोच से ही डरते हैं और कहते हैं हमारे को जो चाहे हम करेंगे। ये बुद्धिमानी कहां से आ गई, ये मूर्खता है। इसको असल में कहते हैं माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वत कृष्ण ज्ञान। ये माया मूर्ख आदमी को बना देती है। तो दूसरे अध्याय में ये सिद्धांत मान लीजिए, जिसको जीवन में श्री चाहिए उसको शरणागति अनिवार्य है, उसको शरणागत होना ही पड़ेगा, नहीं तो श्रेय नहीं होगा। अब नहीं तो अर्जुन जैसा धनुर्धर सर्वश्रेष्ठ पांडु कुल दीप पृथ्वी के ऊपर, उसको सब पहचानते थे, उसको क्या जरूरत थी भाई किसी का शरण लेने की। और फिर अपने मित्र का और भाई का, बुआ का लड़का है कृष्ण, ये मामा बुआ के लड़के भाई है, तो भाई को कोई गुरु कैसे बनाएगा। वहां माता देहूति को कहते हैं कि श्रेय के लिए मुझे शरण में हूं शिक्षा दीजिए, वहां भी मां बेटे को गुरु कर रही है। कपिल देव को माता देहूति गुरु मान के उनसे शिक्षा ले रही है अपने लिए और सबके कल्याण के लिए। और यहां अर्जुन हम सबके लिए, हमारा श्रेय चाहने के लिए, हमारा कल्याण हो, हमारा भला हो, इसलिए भगवान की शरणागति लेके शिष्य बन रहे हैं। वैसे अर्जुन नित्य सखा है भगवान के, और सखा भाव में उदाहरण ही अर्जुन है। जब सखा भक्ति का उदाहरण देते हैं कि भगवान का मित्र कौन है, सखा कौन है, तो अर्जुन का नाम आता है। दास भक्ति का नाम लेते हैं तो हनुमान का नाम आता है। अनेक दास हैं लेकिन विलक्षण जो अपने आप में है वो हनुमान है। ऐसे अनेक भगवान के सखा हैं, लेकिन जो सखा भगवान का, जिसके लिए भगवान कहते हैं अगर अर्जुन के साथ मेरी निष्कपट मैत्री है तो ये उत्तरा का बच्चा ब्रह्मस्तर से जो भस जल गया था वापस जीवित हो जाए, और बच्चा जीवित हो गया। ऐसे महाभारत में लिखा है मेरी अर्जुन के साथ निष्कपट मित्रता है। और कहते हैं जो अर्जुन का मित्र मेरा मित्र, जो अर्जुन का शत्रु मेरा शत्रु, ऐसा मित्र जो है वो भी कहता है मेरे श्रेय के लिए मैं आपके शरण में हूं। तो ये एक सिद्धांत भगवत गीता से अपने जीवन में, जिसको श्रेय चाहिए। श्रेय का मतलब शास्त्र के अनुसार जीवन कैसे जिया जाए, मानव जीवनम के परम कल्याण को कैसे प्राप्त किया जाए। और प्रिय का मतलब है जो मेरे मन में आए वो करूं। इसको कहते हैं प्रिय कौन करते हैं, जो मनोरथी धावते धावते मनोरथ, जो अपने मन के रथ के ऊपर इधर उधर भागते रहते हैं वो प्रिय करते हैं। और जो शास्त्र और गुरु के निर्देश में भगवत भक्ति के मार्ग पर चलते हैं वो श्रेय का मार्ग है। तो श्रेय और प्रिय ये दो रास्ते हैं संसार में, और इन दोनों का वैसे भागवत में दर्शन देखें तो उत्तानपाद की दो पत्नियां, एक सुरुचि है वो प्रिय का मार्ग है, और एक सुनीति है वो श्रेय का मार्ग है। सुनीति का बेटा ध्रुव होता है जो अटल होता है,
और वो शरणागत हो रहा है नारद का जाके, तब उसको श्रेय की प्राप्ति हुई, तब भगवान का दर्शन हुआ और तब ध्रुव भक्तों की श्रेणी में आज भी गाया जाता है। तो श्रेय के लिए नीति चाहिए, जो नीति सुनीति अच्छी नीति के ऊपर चलेगा वो श्रेय के रास्ते पे चलेगा। वो रास्ता ध्रुव है, ध्रुव का मतलब अटल है, हिलने वाला नहीं है, नित्य है, शाश्वत है। और जो सुरुचि है, मनमानी है, वो प्रिय का रास्ता है। वो थोड़ी देर के लिए अच्छा लगे, उत्तम लगे, लेकिन तत्कालीन होता है, वो ज्यादा समय रहता नहीं है और उसका विनाश अवश्य होता है। तो श्रेय अविनाशी रास्ता है, क्योंकि अविनाशी पद को प्राप्त कराता है, भगवत प्रेम की प्राप्ति कराता है, भगवत भगवान के भक्तों की शरणागति। तो ये श्रेय शब्द के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और अर्जुन के ये श्रेय शब्द और अन्य युधिष्ठिर महाराज बहुत बड़े धर्मराज है, साक्षात धर्मराज धरती के ऊपर आए हैं। वो कहते हैं नारद को, अहा ग्रह मूड धीह। देखो ये मूड शब्द वही है जो भगवद गीता के इस सातवें श्लोक में है, धर्म समूढ़। धर्म समूढ़ का मतलब धर्म के विषय में मेरी बुद्धि अटक गई है, फंस गई है, अब अपने आप निकल नहीं पाएगी। ऐसे युधिष्ठिर महाराज कहते हैं ग्रह मूढ़ धीह, हमारी बुद्धि घर गृहस्थी में अटक गई है, यहां से निकल नहीं जाते हैं, निकल नहीं सकती है। ग्रह मूढ़ धीह, मूढ़ का मतलब अटक जाना, फंस जाना और निकल नहीं पाएगी। फिर कहते हैं यत श्रेय है, जो हमारा श्रेय है वो आप बताइए महाराज। वहां कहते हैं हमारा श्रेय क्या है, अंजसा, जो सरलता से कर सके, जिसको करने में कोई कठिनाई नहीं हो, क्योंकि ग्रस्त में बहुत ज्यादा हमारे ऊपर दायित्व है। ऐसे ऐसे कुलीन ग्राम के रथ यात्रा का समय चल रहा है, तो यह रथ यात्रा में प्रतिवर्ष सारे चैतन्य महाप्रभु के भक्तगण बंगाल से और ओडिशा से महाप्रभु के दर्शन पे आते थे। तो कुलीन ग्राम के सत्यराज खान चैतन्य महाप्रभु से अपने परिकरों के साथ पूछते हैं कि हम गृहस्थी हैं, हमारे को तो विषयों में सारा दिन विषयों में का पाला पड़ता है, अब हमारे लिए क्या श्रेय है, हमारे लिए कल्याणकारी क्या क्या है, आप कृपा करके महाप्रभु बताइए। और चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, कृष्ण कीर्तन वैष्णव सेवन शीघ्र पाए कृष्ण चरण। क्या करो, बोला कृष्ण कीर्तन करो, और क्या करो, बोला वैष्णव सेवन करो। दूसरे साल भी यही प्रश्न पूछा और दूसरे साल भी यही उत्तर दिया। तो ग्रस्तों का श्रेय है कृष्ण कीर्तन और वैष्णव सेवन। और वैष्णव सेवन की परिभाषा क्या है, वैष्णव सेवन का मतलब वैष्णव के संग में बैठकर हरि कथा सुनना, संत की सेवा हरि नाम ध्याय। वैष्णव की संत की सेवा क्या है, उनसे भगवान की कथा सुनना। तो कथा सुनना ये है, जैसे नित्यम भागवत सेवया, तो रोज भागवत का सेवन करने का मतलब है भागवत का श्रवण करना। तो भक्तों का सेवन का मतलब है भक्तों से कथा कीर्तन सुनना। तो ये श्रेय का साधन है। और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दो धर्मों का उपदेश दूसरे अध्याय में दिया। पहला उपदेश, पहले तो उनको सांख्य दर्शन से आत्मा चेतन और जड़ का विधिवत ज्ञान बताया, चेतन आत्मा क्या है और जड़ क्या है। शरीर प्रकृति ने दिया है जो जड़ है और आत्मा चेतन है, इनके गुणों का वर्णन किया। इसके बाद दो धर्मों का वर्णन किया, जो दो स्वधर्म है, एक शरीर का स्वधर्म और एक आत्मा का स्वधर्म। आज शरीर के स्वधर्म में क्षत्रिय के धर्म का अर्जुन को उपदेश दिया और हर एक अपने वर्ण के अनुसार अपना धर्म पालन करे। लेकिन आत्मा के धर्म का उपदेश दिया, वो सबके लिए है, और उसको स्थित प्रज्ञ के नाम से, जिसकी बुद्धि प्रज्ञा, ये जो बुद्धि शब्द है ना, जो भूतकाल की गुजरे हुए समय की बुद्धि, जिसके पास अच्छी बुद्धि होती है, गुजरे हुई बातों को याद करे, उस बुद्धि को कहते हैं स्मृति। वो बुद्धि जिसमें पुरानी बातें याद रहे उसको स्मृति बोलते। जो तत्काल अभी इस वक्त कोई समस्या का समाधान करने में सफल हो जाए तो कहेंगे कि बुद्धि बड़ा बुद्धिमान है। पुरानी बात याद बताए तो कहेंगे इसकी स्मृति अच्छी है। बुद्धि पुरानी याद को कहते हैं स्मृति, और तत्कालीन बुद्धि को कहते हैं बुद्धि, और जो भविष्य में किसी चीज को पकड़ लेती है उसको कहते हैं मति। मति वो बुद्धि है जो भविष्य में किसी को वर्ण करना चाहे, ग्रहण करना चाहे, उसको मति कहते हैं। और भक्तों की मति को कहते हैं सती मति। भक्तों की मति मतलब उनका भविष्य भगवान के साथ जुड़ा होता है तो वो सती मति कहलाती है। उनका उन्होंने भगवान को पति के रूप में ग्रहण किया है, वो स्वामी है, हम सेवक हैं। ऐसी बुद्धि जो भगवान को स्वामी कर ग्रहण कर दे उसको सती मति कहते हैं। और वैसे भगवान भगवत गीता में मांगते क्या है सारी में, मैं अर्पित मनो बुद्धिर, तेरी मन और बुद्धि मुझे अर्पण करो। और फिर कहते हैं मैं बुद्धिम निवेश है, बुद्धि में मुझे निवास कराओ। तो निवास किसको दिल में कराएंगे, जो हमारा प्रिय होगा, जिसको हम अपना मानेंगे। तो सती मति, तो मति कहते हैं जो भविष्य में बुद्धि किसी का वरण कर ले। ये भीष्म पितामह की प्रार्थना में आता है, इति मतिरुपकल पिता वित्रषणा भूमना। ये मेरी मति भीष्म पितामह कहते हैं, जिसने आपका वरण कर लिया है, आप इसको स्वीकार कीजिए। और जो मति तीनों गुणों से, तीनों कालों से परे हो, देखो ये भूत भविष्य वर्तमान की मति के नाम बताए, भूत की मति स्मृति, वर्तमान की बुद्धि और भविष्य की मति ये बुद्धि, जो तीनों कालों से परे गुणा अतीत जो बुद्धि है उसको प्रज्ञा कहते हैं। और भगवत गीता में हमारा जो स्वधर्म है वो प्रज्ञा है, स्थित प्रज्ञा। क्या भाषा समाधि स्तस्य केशव, स्थित बुद्धि किसको कहते हैं, स्थित प्रज्ञा कौन है। तो यहां भगवान ने दो प्रकार का स्वधर्म बताया है, शरीर का स्वधर्म और आत्मा का स्वधर्म। और फिर तीसरे अध्याय में हर हाल में आत्मा सक्रिय है, इसलिए कुछ करना ही पड़ेगा, बगैर करने के कोई रह नहीं सकता है। स्वभाव से आत्मा सक्रिय है, एक्टिव है, और क्रिया रहित नहीं हो सकता है, कोई भी कभी क्रिया रहित नहीं हो सकता है। इसलिए सबको शरीर से कर्म करना ही चाहिए, किसके लिए कर्म करें ये प्रश्न उठा, कर्म तो करना है किसके लिए करें। तदर्थम कर्म कौन ते, भगवान के लिए काम करो, मुक्त संग और तुम बुद्ध मुक्त हो जाओगे। तो काम किसके लिए करें, बोला जिसका सामान है उसके लिए करो। इस दुनिया में ये सब कुछ दुनिया में पड़ा है किसका है, कहां से आया भाई, दुनिया में जो कुछ आपके पास है, जो आप उपयोग में लाते हैं, ये आया कहां से, इसका मालिक कौन है। ये प्रभुपाद जी के पास कोई धनी सेठ जो सीमेंट का फैक्ट्री का मालिक था, कारखाने का, मिलने आया था मायापुर में। तो प्रभुपाद ने कहा हाँ महाशय जी आप क्या करते हैं, बोला सीमेंट की फैक्ट्री है। बोला सीमेंट कैसे बनाते हैं, बोला पहाड़ों से पत्थरों को पीस के। बोला पहाड़ किसने बनाया। अब वो बेचारा थोड़ा सा ऐसे झिझका, बोला पहाड़ तो भगवान ने बनाया। पर तो प्रभुपाद, फिर भगवान का माल चुरा के अपना लेबल लगाते हो भाई, पहाड़ तो तुमने बनाया नहीं और पहाड़ को पीस के सीमेंट बनाते और बोलते सीमेंट हमारी है, तो सीमेंट तुम्हारी कैसे हो गई। तो वो बेचारा थोड़ा सा कहता है इसलिए तो महाराज आते हैं, साधुओं के भगवान का दर्शन करते हैं, कुछ दान दक्षिणा देते रहते हैं। बोला अच्छी बात है, भगवान का ज्यादा चुराते हो, थोड़ा सा वापस देते हो, ज्यादा खा जाते हो, अच्छा है, कुछ तो दे रहे हो, लेकिन लोग तो सब कुछ भगवान का ही खा रहे। भाई अपने साथ आया क्या, हमारा है क्या? किसी आदमी ने कहा कि हमको त्याग सिखा दो। बोला मुझे बताओ आपका है क्या, तो मैं आपको त्याग सिखाऊं। अरे आपका कुछ है ही नहीं तो त्याग क्या सिखाना है? बस ये मान्यता झूठी आपने समझ रखी है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये तुम्हारी मूर्खता है। मृत्यु के समय जिसको तुम अपना कह रहे हो, उसमें से एक भी तुम्हारे साथ चलने को तैयार नहीं। आज तक कोई साथ गया है? कोई सामान किसी के साथ गया है? कोई रिश्तेदार किसी के साथ गया है? नहीं। तो फिर कोई कौन किसका है? कुछ भी नहीं है अपना। अपना मानने वाला सिर्फ सपना है। अपना जो किसी चीज को कह रहा है वो असल में सपने में है। सपने में मैंने देखा था मेरे पास सोने का पर्वत है, लेकिन जागा तो बोला नाम तुम्हारा क्या है? बोला धनराज, धन का राजा हूं। और काम क्या करता है? बोला भिक्षा मांगता हूं। तो नाम का सिर्फ धनराज है, बाकी तो काम तो वही भिक्षा मांगने का कर रहा है बेचारा। तो ऐसे ये सब स्वप्न का सब माना हुआ है, ये स्वप्न है, ये जागते का स्वप्न है, जो दुनिया समझ रही है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। और एक क्षण के अंदर, एक मिनट के अंदर सब कुछ खत्म हो जाता है, पता तक नहीं लगता। तो भगवान काम किसके लिए करना चाहिए? बोला जिसने सब कुछ दिया है उसी के लिए काम करना चाहिए, जो सब चीजों का स्वामी है उसके लिए काम। तदर्थम कर्म कौन ते मुक्त संग, फिर तो दुनिया के बंधन से मुक्त हो जाओगे। और फिर कहा किसी को काम करने की जरूरत ही नहीं होती है, काय के लिए काम करे, वो तो आत्मा में स्थित है। बोला फिर भी दोनों को, दूसरों के लिए उदाहरण बनने के लिए काम करना चाहिए। तब तो भगवान कहते हैं मेरे को कोई काम करने की जरूरत है क्या? वैसे भी भगवान क्या करते हैं, बांसुरी बजाते हैं, कोई काम करते हैं क्या? बोला मुझे कुछ भी नहीं करना है, फिर भी मैं अवतार काल में धरती के ऊपर सारे परंपराओं के काम निभाता हूं। मैं क्षत्रिय का पालन करता हूं तो क्षत्रिय का धर्म निभाता हूं, और जब ब्रज के अंदर मैं गौपाल बना तो गायों को चराने के लिए भी जाता और गायों का दोहन करता और गायों का पालन करता, और फिर क्षत्रिय का मैंने कार्य संभाला तो मैं राजाओं के बीच में बैठता और महाभारत के युद्ध के अंदर सारा ही भगवान के सुदर्शन चक्र का कार्य है, और कोई ब्राह्मण आता तो सुधामे जैसा मैं उसके चरण भी धोता, मुझे धोने की जरूरत है क्या? लेकिन मैंने सारी कुल परंपराओं की मर्यादा निभाई, तो भगवान को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी भगवान सब कुछ करते हैं प्रकट लीला में, व्यवहारिक लीला में, अवतार काल में मर्यादाओं का पालन करते हैं। मतलब मैं नहीं करूंगा तो सारा ही मेरा नकल करेंगे, और मेरा नकल करेंगे तो मैं सारे विश्व का विनाश का कारण बन जाऊंगा, और सारा सारा आने वाला भविष्य वर्ण शंकर बन जाएगा, क्योंकि वर्ण आश्रम व्यवस्था का विध्वंस हो जाएगा। और अब आज वर्ण आश्रम व्यवस्था तो बिल्कुल जिसको कहा जाए तित्र बितर समाप्त हो चुकी है। प्रभुपाद जी अंत समय कह रहे थे कि देवी वर्ण आश्रम मेरे गुरु महाराज चाहते थे स्थापित करना। देवी वर्ण आश्रम की स्थापना के बगैर विश्व का कल्याण होना संभव नहीं है। और भारतवर्ष की महिमा में पंचम स्कंद में देवता कहते हैं कि एक भारतवर्ष है जहां वर्ण आश्रम व्यवस्था से सुचारू रूप से भगवान का अर्चन होता है। हर एक व्यक्ति अपने वर्ण के काम से भगवान का पूजन कर सकता है। ये वर्ण आश्रम की व्यवस्था केवल भारतवर्ष के लिए है और कहीं के लिए नहीं है। और इसी को यहां बिगाड़ा, 1200 साल के बाहर के शासन ने यहां की सारी परंपराओं की धज्जियां उड़ा दी। और ये बार बार कहने की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि अभी तक भी हम गहरी नींद में सोए हुए हैं, जाग नहीं पा रहे हैं। 1830 के दशक में ब्रिटिश ने यहां सर्वे किया, कोई भिखारी नहीं था भारत में, कोई भीख मांगने वाला नहीं था, 100% पढ़े लिखे लोग थे, सअक्षर दक्षिण भारत में,
और 97% उत्तर भारत में पढ़े लिखे लोग थे और 18-18 विषय वो भी फ्री में गुरुकुल में गुरुजन पढ़ाते थे और गुरुकुलों का सारा खर्चा राजा या धनी सेठ चलाते थे, पढ़ाने का एक पैसा नहीं था और 100% एजुकेशन थी, कोई बेरोजगार नहीं था। नौकरी के लिए भारतीय संस्कृति में कोई नौकरी करे ऐसा किसी का देखा नहीं जा रहा था, नहीं नौकरी कौन करेगा, उत्तम खेती बढ़ता व्यापार नीच नौकरी भीख मांगना बेकार। ये तो बचपन में हमारे को स्कूल में पढ़ाते थे कि खेती है तो बड़े भाग्यशाली हो, उत्तम खेती बढ़ता व्यापार, व्यापार करोगे तो बढ़ेगा, नीच नौकरी, नौकरी कितनी भी बड़ी हो लेकिन दूसरे की है नीच है, भीख मांगना बेकार। ये तो बचपन के स्कूल की हमारी शिक्षाएं थी क्योंकि ये था ही नहीं भारत में। तब भारत के अंदर अंग्रेज ने, लॉर्ड मैकाले ने कहा कि ये पढ़ाई की पद्धति अगर भारत में रही, ये गीता ये भागवत ये रामायण की शिक्षाएं इनके बचपन में सुती के साथ घोट के पिला दी है, इनके खून में है और जब तक ये रहेगी तब तक ये हमारे गुलाम नहीं होंगे, ये हमारे नौकरी नहीं करेंगे, ये हमारे तलवे नहीं चाटेंगे, बोला फिर क्या करना चाहिए। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि गुरुकुल पद्धति को जड़ से उखाड़ दो, जो इसके लिए दान पुण्य देते हैं राजा महाराजा उनका अवैध दान कर दो, इलीगल है मत दो, और जो पढ़ा रहे हैं पंडित उनको डरा धमका के भगा दो, और इस पद्धति का जड़ से उखाड़ दिया। और मैकाले ने चिट्ठी लिखी अपने पिता को, जैसे खेत में अच्छा किसान बीज डालने से पहले सफाई करता है ना, ऐसे हमने भारत की शिक्षा पद्धति की सफाई कर दी है। अब हम कॉन्वेंट का बीज बोने जा रहे हैं, अब हम अंग्रेजी भाषा का बीज बोने जा रहे हैं और भविष्य में ये देखने के भारतीय लगेंगे, लेकिन ये सारी उम्र हमारे नौकर रहेंगे और हमारे पास नौकरी के लिए धक्के खाते रहेंगे, हमारे तलवे चाटते रहेंगे, और आज तक हम इस बीमारी से मुक्त नहीं हुए, पहरवास नहीं बदल पा रहे हैं। क्या जरूरत है गर्मी में गले में फंदा टाई का डाल के और ये उल्टा पेंट और कोट पहन के, गधे के ऊपर भी इतना माल नहीं डालते जितना सामान्य लोग माल डाल के ऊपर घूम रहे हैं, जरूरत क्या है मई जून में ये करने की, क्या जरूरत है इसकी। इतना बड़ा पूर्वजों ने ये एयर कंडीशन धोती आपका ड्रेस बनाया कितना सुंदर है, इसको छोड़ा क्यों, इसको छोड़ा क्यों, हमको सब तुम्हारी धोती उतारी किसने ये तो बताओ, कहां गई तुम्हारी धोती, कहां गई तुम्हारी पगड़ी। और आश्चर्य लगेगा आपको, मैकाले ने भारत से गुरुकुल की पद्धति का विध्वंस किया और श्रील प्रभुपाद ने अमेरिका में गुरुकुल खोलने का प्रारंभ किया, जाके पहले 67 में इस्कान और 67 में गुरुकुल की स्थापना की कि ये पद्धति जहां तब जब तक नहीं आएगी तब तक विश्व का कल्याण नहीं हो सकता, ये संभव ही नहीं है। प्रभुपाद क्रांत बहुत बड़ी क्रांति की है, वहां गुरुकुल पद्धति खोलने का बहुत बड़ा साहस किया कि जहां यहां से उखाड़िए तो वहीं खोलते हैं, क्योंकि ये शिक्षा जब तक नहीं आएगी। और आश्चर्य आपको लगेगा, प्रभुपाद ने थोड़ी सी जागृति लाई है, नौजवान ये आपके सामने बैठे हैं, ये बच्चे गौरव के साथ धोती पहन रहे हैं, अपनी परंपराओं में गौरव का अनुभव कर रहे हैं, ये भगवत गीता की कृपा है, ये भगवत गीता की शिक्षा का गौरव है कि आज नवयुवक पूरे विश्व के अंदर वैदिक, ये कोई ड्रेस हमारी, हम कई बार कह चुके हैं फिर भी कहते हैं कि ये साड़ी या ये धोती कोई हिंदू की ड्रेस नहीं है, भारत की ड्रेस नहीं है, ये आध्यात्मिक जगत की ड्रेस है, ये ऋषियों की ड्रेस है, ये देवताओं की ड्रेस है, ये भागवत पुरुषों की ड्रेस है, ये त्याग और वैराग की ड्रेस है, ये उदारता की ड्रेस है,
ये कोई किसी देश की ड्रेस नहीं है, ये तो लोगों ने इसको ऐसे कह दिया है। लेकिन सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो पूजा पाठ के लिए आज भी जो लोग जाते हैं अपने मजहबों की पूजा करने, तब भी ऐसे ही ओतरी और धोती पहनते और कुछ नहीं पहनते। अब देख लीजिए पूरे विश्व के अंदर, 3-4 साल पहले रशिया में हमने देखा, जनवरी के महीने में जमे हुए पानी की नदी के अंदर एक खड्डा बनाया और उनका पादरी वही धोती जैसा पहन के उस खड्डे में ठंडे में नहाया और फिर पानी लाके सबको छड़का, जैसे हम कुंभ मेलों में ठंडे पानी में जनवरी में नहाते हैं प्रयागराज में, वो परंपरा है। वैसे की वैसे देखा जाए तो वो वैसे ही कपड़े पहन के गया, वैसे ही कुछ उसने किया। तो ये संस्कार जो पुराने प्राचीन हमारे हैं, ये पूरे विश्व के संस्कार है, किसी एक जगह के नहीं है। आज भी दो सफेद कपड़े पहने हुए पूजा करते हुए लोग दिखाई देंगे, कहीं भी होंगे तो ऐसा ही बस। तो ये हमारा प्रभुपाद जी ने ये बहुत बड़ा एक उपकार किया है विश्व के ऊपर, और विशेष रूप से जो भारतीय मूल के लोग अंग्रेज यहां से कूली बनाकर, मजदूर बनाकर, गुलाम बनाकर जहां अफ्रीका के अन्य देशों में ले गए थे, वो बेचारे अपने आप को वहां बहुत समय तक सेकंड थर्ड क्लास सिटीजन समझते थे। जब से प्रभुपाद जी के अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ का गोरे अमेरिका के और यूरोपियन भक्त धोती चोटी पहन के हरे कृष्ण कीर्तन लगे करने लगे, तो उनको कहा ये तो हमारे दादा बाबा का है, ये तो उनको ऐसा गौरव होने लगा। आज विश्व के भारत मूल के विदेशी देह में रहने वाले लोगों को प्रभुपाद ने बहुत बड़ा गौरव प्रदान किया है, उनको आज अपने वेशभूषा के ऊपर, अपनी संस्कृति के ऊपर बहुत बड़ा गौरव हो रहा है। ये प्रभुपाद की सबसे बड़ी उपलब्धि है, नहीं तो वो भारतीय वहां आज समाप्त हो चुके होते, उनका नाम निशान खत्म हो गया होता। लेकिन ये बहुत बड़ी जागृति वापस आ गई। आज तो कहीं भी दुनिया के मंदिर में जाते हैं तो भारतीय ही सब मिलते हैं और सारे ही सेवा करने के लिए वापस आ गए, जो 4-4, 5-5 पीढ़ियों से 200 साल से वहां रह रहे हैं। तीसरे अध्याय की बात कर रहे थे असल में, कि ये भारतीय संस्कृति में भगवान अपना कार्य स्वयं करके उदाहरण स्थापित करते हैं। भगवान उदाहरण स्थापित नहीं करें तो कौन ये उदाहरण, कौन सिखाएगा हमको। और चौथे अध्याय में भगवान ने कहा काम करना है तो कुछ पहले जानकारी हो, काम करे कर्म तो करे लेकिन ज्ञान नहीं हो तो उसका कर्म ठीक नहीं है। तो चौथे अध्याय का नाम दिव्य ज्ञान है, और दिव्य ज्ञान कहां से आता है, बोला भगवान ही देता है। भगवान ज्ञान का भंडार है, सच्चित आनंद, चित का मतलब ज्ञान, और भगवान के ज्ञान की अभिव्यक्ति भगवत गीता से होती है। भगवान सत्य है, चित है, आनंद है, तो भगवान के चित्त की अभिव्यक्ति कैसे होती है, चित्त को कैसे प्रदर्शन भगवान करते हैं, बोला भगवत गीता के उपदेश से। भगवत गीता भगवान के चित्त विलास है, भगवान के ज्ञान का ये भंडार है। और ये भगवत गीता में जो भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान अर्जुन को दिया, ये विशेष रूप से अर्जुन को प्रेरित करके अपने धर्म पालन करने के लिए दिया। इसको प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान कहते हैं, क्योंकि अर्जुन को युद्ध में प्रेरित किया कि ये धर्म आपको पालन करना है। लेकिन अब एक थोड़ा हिस्सा रह गया भगवान के उपदेश का, तो भागवत में उद्धव को निवृत्त करके अब सब छोड़ो, बद्रीनाथ जाओ और मेरे इस ज्ञान का प्रचार करो। तो जो रहा हुआ कुछ गीता का ज्ञान जो भगवान शेष पूरा नहीं दे पाए, तत्कालीन उस कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में 45 मिनट में गीता का उपदेश दे भी दिया, अर्जुन ने समझ भी लिया, और उसके ऊपर अर्जुन ने कार्रवाई भी कर ली, काम भी कर लिया, उसको उपयोग में भी लाया, अप्लाई भी किया। लेकिन फिर भगवान ने शेष उपदेश उद्धव के माध्यम से दिया है। श्री प्रभुपाद जी ने लिखा है जो रिमेनिंग टीचिंग्स भगवान की है वो उद्धव को भगवान ने 24 अध्यायों में उद्धव गीता में 11वें स्कंद में दिया है। वो अपने आप में बहुत विलक्षण है, और वो उद्धव को सब कुछ छुड़ाने वाला है। अर्जुन को तो राज दिलाने के लिए किया है उपदेश, और उनको सब कुछ छुड़ाने के लिए उपदेश किया है, तो वो इससे एडवांस उपदेश है, वो और प्रगतिशील उपदेश है। तो भगवान ने दिव्य ज्ञान का और दिव्य ज्ञान की परंपरा में विशेष रूप से भगवत गीता में भगवान ने अपना परिचय दिया है। भगवत गीता में क्या है, भगवान आइडेंटिफिकेशन, भगवान क्या है, भगवान क्या है, भगवान के विषय में भगवान ही जानकारी दे रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण श्लोक चौथे अध्याय का प्रभुपाद के शब्दों में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं युवेति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति माम इति सो अर्जुन। भगवान कहते हैं मैं अर्जुन इस धरती के ऊपर प्रकट होता हूं मेरी अपनी इच्छा से, मेरी योग माया से, मैं अद्भुत लीला करके लोगों को आकर्षण करता हूं, और मेरे जाने के बाद भी वो मेरी शिक्षा भगवत गीता को सुनते हैं, और जो मैं करता हूं, भगवत गीता आइडेंटिटी कृष्ण की है और भागवत एक्टिविटी कृष्ण की है, कृष्ण का कार्य क्या करते हैं, यहां कौन है कृष्ण, क्या कहता है कृष्ण, लेकिन भागवत में है कृष्ण क्या करता है, एक्टिविटी ऑफ कृष्ण है, क्या करते हैं कृष्ण, वो जो करते हैं उसको सुनने से हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। और फिर चैतन्य महाप्रभु वो तो भगवान क्या सोचते हैं उससे एडवांस है, इसलिए भगवत गीता को कहते हैं ग्रेजुएट स्टडी, ये हमारी प्रारंभिक सफलता का, आध्यात्मिक सफलता का शास्त्र है, और इससे ऊपर है भागवत, भगवान क्या करते हैं, भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता, भगवान क्या करते हैं श्रीमद् भागवत, लेकिन भगवान क्या सोचते हैं मेंटालिटी ऑफ गॉड, भगवान की मनोभाव क्या है, ये चैतन्य चरितामृत। चैतन्य महाप्रभु भगवान क्या सोचते हैं, तो ये एक दूसरे से उत्तर उत्तर है। वैसे भागवत भगवत गीता अपने आप में बहुत ही राज विद्या राज गोयम, ये चौथे अध्याय का श्लोक है, नहीं नवे अध्याय में राज विद्या राज गोयम, ये विद्या सब विद्याओं का राजा है, और बड़े बड़े राज ऋषि इस विद्या को प्राप्त किया करते थे। तो आगे पांचवें, तो चौथे अध्याय में क्या है, ज्ञान, फिर बोला ये ज्ञान मैं देता हूं, लेकिन मेरे जाने के बाद ये ज्ञान मेरे भक्त देते हैं, आप उनके पास चले जाओ और उनकी सेवा करो, उनसे मेरे को पाने के प्रश्न पूछो, तो आपके ऊपर कृपा करके वो आपको मेरे से मिलाने का साधन बताएंगे, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न। और फिर पांचवें अध्याय के अंदर भगवान ने थोड़ा ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो कर्म किया जाता है उसका प्रदर्शन किया है, कि अब समझदार आदमी काम कैसे करता है, बोला वो कैसा काम करता है, बोला मैं आत्मा हूं काम नहीं करती है, शरीर काम करता है, इसलिए वो बंधन में पड़ेगा ही नहीं, आंखें देख रही है, मैं तो ना आंख नहीं हूं, कान देख सुन रहे हैं, मैं कान नहीं हूं, मैं तो सच्चित आनंद भगवान का अंश आत्मा हूं, ये हुआ ज्ञान में काम करने की शैली, ज्ञान में काम करने की शैली पांचवें अध्याय का विषय, एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, प्रभुपाद ने अध्याय को ऐसे लिखा है कि समझदार आदमी काम कैसे करता है, और ये भगवान का अपना उदाहरण है कि समझदार आदमी के काम करने की शैली। वो एक बार गोपियों ने बहुत बड़े थाल मिठाई के लिए और कहा कि हमको जमुना के दूसरे पार जाना है, जमुना बहुत बड़ी भारी तेज बह रही है, सामना एक और दुर्वासा ऋषि है, उसका आश्रम है, हम कैसे जाएं? तो भगवान ने कहा आप जमुना जी को कहना योगेश्वर कृष्ण ब्रह्मचारी जैसे, तो आपको जमुना जी रास्ता देगी। तो गोपियां हंसने लगी, योगेश्वर कृष्ण और ये तो रासलीला हमारे साथ करता है और कहता है कि मैं निर्विकारी हूं ब्रह्मचारी हूं, लेकिन जाके बोला जमुना जी ने रास्ता दे दिया, सामने गए दुर्वासा जी को सब भोजन का थाल दे दिया, वो सब खा गया, खा के थाल खाली कर दिया, बोला महाराज अब वापस कैसे जाएं जमुना पार करें, बोला आई कैसे थी, बोला जैसे कृष्ण ने कहा था योगेश्वर कृष्ण निर्विकारी ब्रह्मचारी, बोला आप जमुना को कहता दुर्वासा निराहारी रास्ता दे देगी। अरे निराहारी, सारे थाल तो खा गया और कहता है खाता ही नहीं है कुछ, निराहारी है। बोला जाके बोल देना। और जाके बोला जो रास्ता दे दिया। बोला ये दोनों क्या है? बोला भगवान और एक सिद्ध भक्त, वो कहता है ये खाने का काम मैंने थोड़ी किया, ये तो मुंह ने किया, खाया खत्म हुआ, मैं तो आत्मा हूं, ये मेरा तो भोजन नहीं है, मेरा भोजन तो हरि भजन है, तो मैं खाने के बाद भी निराहारी हूं और भगवान रास विलास के बाद भी निर्विकारी है। ऐसे लिखा है सुखदेव महाराज ने कि 16108 रानियां जिसको अपनी ओर आकर्षित न कर सके अपने हाव भाव से, और भगवान ऐसे योगियों की तरह निर्लेप रहा, किसी में आसक्ति नहीं और सबका परित्याग किया। यही तो भगवान का 6 गुणों में एक गुण है कि वो परम त्यागी है, परम वैरागी है। सब कुछ छोड़ के, ये एक वैभव छोड़ के एक समय में चले गए द्वारका की ओर, देखा भी नहीं वापस मुड़के के वहां क्या था। ये भगवान का पूर्ण वैराग है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। तो 6 अध्याय में फिर असल में क्या, पहले 6 अध्याय जो हैं इसमें मुख्य है कर्म से भक्ति तक कैसे पहुंचा जाए। कर्म से भक्ति तक पहुंचने का साधन है पहले 6 अध्याय में, और इसको योग की सीढ़ी कहा है हमारे आचार्यों ने। और योग की सीढ़ी का मतलब है कि आप 4th मंजिल पे जाना है तो सीढ़ी से जाओ, पहले कर्म करो, फिर ज्ञान, फिर ध्यान और फिर भक्ति। तो ऐसे 6 अध्याय सीढ़ी का 3रा स्तर है ध्यान, 3रा क्या था कर्म, 4था क्या था ज्ञान, और 6ठा क्या है ध्यान। तो कर्म ज्ञान ध्यान ये सब क्या है? बोला ये एक योग के अलग अलग स्तर है। योग एक है लेकिन उसके ये अलग अलग स्टेप्स हैं, स्तर हैं। कर्म योग का, कर्म योगी मतलब योग में कर्म के स्तर पे खड़ा है, ज्ञान योगी योग में ज्ञान के स्तर पे खड़ा है, ध्यान योगी योग में ध्यान के स्तर पे खड़ा है, भक्ति योगी ज्ञान में भक्ति के स्तर पे खड़ा है, और नीचे से ऊपर तक जो सीढ़ी पूरी है इसका नाम है योग। और ये है सीढ़ी। और भक्ति योग स्वतंत्र अपने आप में ये है लिफ्ट, जो अपने आप नीचे से ऊपर ले जाए, बीच में कहीं अलग जाने की जरूरत नहीं, किसी अलग रास्ते को लेने की जरूरत नहीं। तो वो शुरू होगा 7वें अध्याय से, जो भक्ति लिफ्ट वाली है, जिसमें स्तर स्तर से ऊपर नहीं जाना है, सीढ़ी से ऊपर नहीं जाना है, सीधा ही ऊपर जाना है। वो साधन असल में हमारा 7 दिन सुबह शाम हम अब जो सत्संग करेंगे, श्रवण वर्णन करेंगे, वो बीच के 6 अध्यायों का करेंगे, 7 से लेके 12। इस बीच वाले को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं ये है असल में गीता का सार। वो उदाहरण देते हैं कि जब आप कोई बहुमूल्य हीरे जवाहर का आभूषण लेते हो तो उसके लिए डब्बा भी बहुत, चांदी का डब्बा हो, सोने का ढकना हो, लेकिन वो दोनों अच्छे हैं, लेकिन उस डब्बे से ज्यादा मूल्य तो उसके अंदर रखे हुए सामान का है। तो पहले 6 अध्याय नीचे का ढकना है, नीचे का डब्बा है, बीच के 6 अध्याय असल में हीरे मोती माणक हैं भगवत प्रेम के, और आखिरी के 6 अध्यायों में ज्ञान से भक्ति तक कैसे पहुंचा जाए। पहले 6 अध्यायों में कर्म से भक्ति तक पहुंचने का साधन है, और आखिरी 6 अध्यायों में 13 से 18 तक ज्ञान से भक्ति में कैसे जाया जाए। लेकिन जाना कहां है? बीच में भक्ति पे। तो एक है डब्बा, एक है ढकना, तो आखिरी 6 है ढकना, ऊपर का ढक्कन, और नीचे के 6 है डब्बी, और बीच में जो 6 अध्याय है ये है असल में रतन, हीरा मोती, और ये है भगवान की शुद्ध भक्ति। तो 6 अध्याय में ध्यान योग का वर्णन है। अब योग जब पूरा होने लगा तब कहा कर्मी से ज्ञानी अच्छा है, ज्ञानी से ध्यानी अच्छा है, और फिर कहते हैं तुम योगी बन जाओ। फिर कहते हैं योगी नाम सर्वेशम, जितने भी योगी हैं, मत गते अंतरात्मा, जो हृदय में सदा मेरा चिंतन करता है, श्रद्धावान, ये शब्द श्रद्धा आ गया, यो भजते माम, जो मेरा भजन करता है, समय युक्तत्व मतः, उसको मैं सर्वश्रेष्ठ योगी मानता हूं। ये 6 अध्याय का आखिरी श्लोक है। तो भगवान आप में अंतरात्मा आपको अंदर में कैसे आपका हमेशा ध्यान करे, श्रद्धा के साथ भजन में लगा रहे, वो सर्वश्रेष्ठ योगी है, ये कैसे हो? तो 7 अध्याय शुरू होता है। तो आज हम 7 अध्याय का आरंभ करते हैं और सायंकाल को फिर इसी अध्याय को चलाएंगे। 7 अध्याय का श्री प्रभुपाद जी ने नाम दिया है, 7 अध्याय का क्या नाम दिया है, नॉलेज ऑफ दी एब्सोल्यूट। उसका मतलब क्या हुआ, भगवत ज्ञान, भगवत ज्ञान। और अध्याय के अंदर शब्द है ज्ञान विज्ञान। तो ये भगवत ज्ञान, और सामान्य रूप से गीताओं में इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग, ज्ञान विज्ञान योग। तो इसका पहला श्लोक आप हमारे साथ पाठ कीजिए। श्री भगवान वाच, मयासक्त मनः पार्थ, योगं युञ्जं मदाश्रय, असंक्षं समग्रं माम्, यथा ज्ञासि तच्छृणो। अब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, देखो यहां लिखा है श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाचा के ऊपर अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भगवान शब्द का उपयोग कभी नारद भगवान, व्यास भगवान, ब्रह्मा भगवान, गुरुदेव भगवान, ऐसे भगवान शब्द पर्यायवाची कुछ महान देवताओं के लिए भी होता है, गुरुजनों के लिए भी होता है, लेकिन श्री भगवान किसी के लिए नहीं होता है। श्री गुरु भगवान, श्री भगवान गुरु नहीं होगा, श्री भगवान नारद नहीं होगा, श्री भगवान ब्रह्मा नहीं होगा, क्योंकि श्री का अर्थ है लक्ष्मी। तो श्री भगवान विलक्षण भगवान विष्णु का, भगवान नारायण का, भगवान श्री कृष्ण का बोध कराता है। ये भगवान शब्द नहीं है, ये श्री भगवान शब्द है। भगवान किसी के लिए उपयोग में आ सकता है। ब्रह्मा भगवान कहते हैं, शंकर भगवान कहते हैं, ब्रह्मा नारद भगवान भी कहते हैं, व्यास भगवान भी कहते हैं, लिखा भी है भागवत में, लेकिन श्री भगवान का ही नहीं होगा। श्री भगवान का मतलब श्री युक्त भगवान, लक्ष्मी युक्त भगवान, और सहस्र लक्ष्मी जिसकी सेवा करती है राधा युक्त कृष्ण, तो ये श्री भगवान हो गया। श्री भगवान क्या कहते हैं, मैं आसक्त मन पार्थ। सबसे ज्यादा अर्जुन को संबोधन भगवत गीता में है पार्थ, दूसरे नंबर पे है कौनते। जब भगवान श्री कृष्ण को पार्थ शब्द कहते हैं, तब कृष्ण अर्जुन की पीठ के ऊपर हाथ रखते हैं, जैसे कोई घनिष्ठ मित्र अथवा पिता अपने पुत्र को कोई खास बात समझाना चाहता हो, स्नेह के कारण उसके पीठ के ऊपर हाथ रख के, बेटा ऐसा कोई कहे समझते हो? तो ये भगवान के हृदय में जब अति स्नेह अर्जुन के लिए प्रकट होता है, तब पार्थ संबोधन करते, क्योंकि भगवान का नाम ही पार्थ सारथी हो गया। इतना पार्थ पार्थ कहा कि कृष्ण का नाम ही हो गया पार्थ सारथी, अर्जुन का सारथी, सब अर्जुन मानते हैं लेकिन गीता में पार्थ इतना संबोधन किया और इससे ऐसे ध्वनित हो रहा है कि पार्थ कहते हुए भगवान के हृदय में प्रेम, क्योंकि भगवत गीता का, भगवत गीता को भगवान कहते हैं महाभारत में, गीता में हृदयम, गीता मेरा हृदय है और हृदय में प्रेम होता है, और जब भगवान का प्रेम ऐसे बहने लगता है अर्जुन के स्नेह के कारण, जैसे बछड़े को देख के गाय के स्तन में दूध आ जाता है, ऐसे अर्जुन जैसे योग्य अपने मित्र शिष्य और भक्त को देखकर भगवान के हृदय से जब गीता का रहस्य निकलते हैं तब पार्थ संबोधन करते हैं। और इससे भगवान का, कृष्ण का अर्जुन के जो साथ जो संबंध है वो भी ध्वनित होता है। प्रथा का पुत्र, प्रथा कुंती का नाम है, जन्म का नाम उसका प्रथा था, जब कुंती भोज महाराज को गोद दे दी गई तो उसका नाम हो गया कुंती, लेकिन वैसे उसका नाम है प्रथा। मैं आसक्त मन पार्थ, मेरा भाई जो सर्वश्रेष्ठ योगी होता है ना उसका मन मुझ में आसक्त होता है, उसका मन मुझ में आसक्त होता है। ये आसक्त जो शब्द है यही बिगड़ के लश्करी भाषा, उर्दू को कहते हैं लश्करी भाषा, भाषा लश्करी का मतलब ये होता था कि जो अंग्रेज की सेना होती थी ना उसमें हिंदू भी होते थे, मुसलमान भी होते थे, सिख भी होते थे, सबकी भाषा मिलके जो भाषा बन गई उसका नाम हुआ लश्करी भाषा। तो लश्करी भाषा को फिर उर्दू कहा गया, तो उस उर्दू भाषा में ये शब्द आसक्ति इश्क है। इश्क का मतलब है जो प्रेम करे। आसक्त शब्द आप अब हमारे रूप गोस्वामी के छठे नंबर पे आता ही आते हैं आसक्ति। आदो श्रद्धात साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि फिर आसक्ति, छठे नंबर का है। तो ये आसक्ति जब आती है वो ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन है। साधन भक्ति जहां समाप्त होती है और राग भक्ति जहां शुरू होती है वो आसक्ति का स्तर है। तो जिसका मन मुझ में आसक्त है इसका मतलब जो मुझसे अनन्य प्रेम करता, जिसके मन में मेरे अलावा और कोई है नहीं। मैं आसक्त के दूसरे दशम अध्याय के अंदर मैं आसक्त का दूसरा रूप देखें तो वो रूप है मच्चित्ता। मैं आसक्त और मच्चित्ता में भी कोई अंतर नहीं है। मच्चित्ता और चित्त क्या है? एक तो चित्त का मन को ही चित्त कहते हैं और चित्त की दूसरी भाषा करें तो चेतना। अच्छा एक बात और ध्यान में रखिए, ये भगवान ने मई आसक्त मनह क्यों बोला? ये मन क्या है? दसवें अध्याय भगवत गीता में आएगा इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मन मेरी विभूति है। भगवान ने मन को अपनी विभूति बताया है और विभूति की परिभाषा है जिसमें भगवान निवास करे। विभूति उसको कहते हैं जिसको देख के भगवान याद आ जाए, ऐसी चीज जिसको आपको देखते ही भगवान की स्मृति हो उसको कहते हैं विभूति। तो मन भगवान की विभूति है। इंद्रियाणाम मनस चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं। तो जो भगवान की विभूति है वो दुनिया में कहीं भी आप अटकाने का प्रयास करो, फंसाने का प्रयास करो, उसको आसक्त करने का प्रयास करो तो हो नहीं सकती है, क्योंकि वो उनकी तरफ जाएगी नहीं। इसलिए आज तक किसी का, दुनिया में किसी का मन एक जगह टिका ही नहीं है। हाथी का कन, पीपल का पन और मूरख का मन सदा लटकता रहता है। देखा है हाथी कभी कान को एक जगह खड़ा नहीं करेगा, चलता रहेगा, हवा हो ना हो पीपल का पता ऐसे करता रहेगा, ऐसे मूरख का मन भी ऐसे करता रहेगा। तो किसका मन स्थिर होगा? जिसका मन आसक्त हो गया, जिसके मन ने भगवान से आसक्ति इश्क कर लिया। और मत्चित्ता की परिभाषा आएगी तब फिर बताएंगे। मत्चित्ता का एक दूसरा अर्थ है जिसके चित्त में, वो ना जिसके मन में भगवान का चित्र आ जाए। मत्चित्ता का मतलब भगवान का चित्र, भगवान का चित्र का मतलब भगवान श्री कृष्ण का वो मुरली मनोहर है जिसके मन में बैठा हो। आपको आश्चर्य लगता है कि हमारे दिल में, हमने हमारे दिल में कितनी मूर्तियां बना के रखी है। देखो आप अंदर जाके देखो क्या दिखाई देता है। दो दो हजार के नोट दिखाई देंगे, 500 के नोट दिखाई देंगे, कितने जेब में है, कितने घर में है, कितने बैंक में है। फिर अपना बेटा दिखाई देगा, फिर पत्नी दिखाई देगी, फिर ग्राहक दिखाई देगा, फिर कोई लड़ाई झगड़े वाला दिखाई देगा। इतनी सारी मूर्तियां अंदर भरी हुई है। मत्चित्ता का उदाहरण कौन है? हनुमान। ऐसे छाती छोड़ के खोल के सीताराम दिखाया कि नहीं दिखाया? जिसके मन में भगवान का स्वरूप सदा विराजमान हो, बाकी सब मूर्तियां निकाल दी। बोले बाकी मूर्तियां निकलती कैसे हैं? वो इसका आखिरी शब्द, आखिरी शब्द श्लोक में क्या है? तत्शृणो। जब भगवान के गुणों का, दयालुता का, भक्तवत्सलता का, करुणा का, सुंदरता का, वीरता का श्रवण करेंगे तो हृदय पिघल जाएगा और हृदय में बनी हुई संसार की सारी मूर्तियां अपने आप गल के बह जाएंगी और जिसकी कथा सुन रहे हो उसकी मूर्ति आके हृदय में विराजमान हो जाएगी। ये है कथा का उद्देश्य। कथा में भगवान के सुंदर सुंदर गुणों का, लीलाओं का वर्णन हृदय को द्रवित करके और माया की सारी मूर्तियों को पिघला देता है और भगवान की दिव्य मूर्ति हृदय में निरंतर अपने आप। इसलिए प्रभुपाद जी कहा करते थे शुद्ध भक्त का हृदय दूरदर्शन बन जाता है और भगवान की लीलाएं धारावाहिक उनके हृदय में चलती रहती है और भगवान की सुंदर मूर्त तो कभी उनके हृदय से हटती भी नहीं है। हट जाए तो मदगत प्राणा, अगर हृदय में मैं दिखाई नहीं दूंगा तो प्राण निकल जाएंगे। ध्रुव महाराज भगवान को हृदय में देख रहा था, भगवान सामने आके खड़े हो गए, ध्रुव महाराज आंखें नहीं खोल रहा है। भगवान ने अंदर से अपना दर्शन छुपा दिया, ध्रुव महाराज छटपटाया, क्या हुआ क्या हुआ, और वापस भगवान को देखा तब का जो अंदर दिख रहा था वो बाहर खड़ा है। ये मत्चित्ता का उदाहरण है। नारद मत्चित्ता का उदाहरण है। भक्ति वेदांत की शिक्षा, उनके प्रसाद शेष पाने से और माता के मृत्यु को भगवान की करुणा मान के और जब निकला है उत्तर दिशा में और पर्वत पर्वतों से वनों से गुजरता हुआ सरोवर में स्नान करके और बताए हुए रास्ते से अनुसमरण, अनुसमरण का मतलब जैसे उनको सिखाया गया उससे जैसे ध्यान किया हृदय में भगवान का चित्र प्रकट हो गया। मच्चित्ता मय्यासक्त हो गया, बड़ा आनंद आने लगा नारद को और अचानक अंदर से चित्र गुम हो गया। नारद छटपटाया, बहुत बड़ा छटपटाया, क्या हुआ, कितना अच्छा सुंदर चित्र कहां चला गया। फिर वाकई ना आया, फिर वही मंत्र उच्चारण किए लेकिन कुछ नहीं हुआ। प्रभुपाद जी लिखे कि भगवान अपनी कृपा से प्रकट होते हैं भक्तों के हृदय में। भगवान को जबरदस्ती काही पकड़ के मेरे हृदय में आओ, जैसे सूर्य को कोई नहीं कह सकता है रात को 12 बजे उग जाओ, जब उनका टाइम होगा तब उगता है, ऐसे जब हमारा हृदय शुद्ध होगा तो भगवान का प्रकट्य होगा। तब नारद को केवल शब्द सुनाई दिया, नारद कोई योगियों को दोबारा दर्शन नहीं देता, कोई योगी मेरा दर्शन नहीं कर सकते, जो योगी नहीं है, योग्य नहीं है, कोई योगी नाम दर्शन नहीं होता है। अपक्व हो, अभी पक्के नहीं हो, वन में मुझे ढूंढ रहे हो, वन तो सत्वगुण का होता है, मैं तो तीनों गुणों से परे हूं। भाई वन में क्यों गए, वन तो सत्वगुण का है, तो मैं तीनों गुणों से परे हूं और तुम्हारे को अभी कुछ समय साधन करना पड़ेगा, इस कल्प में तुम्हारे को दर्शन नहीं होगा, लेकिन तुम इस साधन को जमाए रखो,
और नारद ने इस साधन के ऊपर विश्वास किया। आज नारद जब जाए जब चाहे भगवान का दर्शन हृदय में करे तो हृदय में, साक्षात करे तो साक्षात कर सकता। तो मैं आसक्त मनहा, ये मन तेरा दुनिया में अर्जुन कहीं नहीं टिकेगा, ये मन मुझ में ही टिकेगा। और ये कहीं मन तुम्हारा चला गया तो तुम्हें पर्या दुख देगा, तो ये मन मेरे पास रख ले। मैं आसक्त मनहा पारत, आसक्ति की परिभाषा क्या है, उदाहरण देते हैं आसक्त का। ये जो काला भौंरा होता है ना, बम्बल बी, ये अच्छी खासी लकड़ियों के अंदर छेद करके होल बना सकता है। देखा है आपने कभी भौंरे, काले भौंरे लकड़ी में छेद बना देगा, सुराख कर देता है। लेकिन कंवल के साथ इतनी आसक्ति है, उसके बीच में मकरंद सूंघने के लिए बैठता है, शाम को कमल बंद हो जाता है, चाहे तो उसके अंदर से सुराख करके लकड़ी को सुराख कर सकता है, लेकिन उसके में इतना आसक्त है, इतना आसक्त है कि अंदर प्राण निकल जाता है लेकिन उसको काटता नहीं। इसको आसक्ति कहते हैं। भगवान से इतनी आसक्ति है, इतना प्रेम है, प्रहलाद महाराज की तरह भले बाप अपना हिरण्यकशिपु दुनिया के कितने भी संकट दे, लेकिन भगवान को मन से नहीं हटाना। वो तो एक बार बैठ गया तो बैठ गया, अब उसकी जगह पे और कुछ नहीं लगाना। ये तो माताजी लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर बहुत बड़ी अच्छी प्रक्रिया होती है। बाजार में जाते हैं, एक दिल जैसा लॉकेट बनाते हैं, फिर जब छोटे बच्चे होते हैं तो माँ बाप का फोटो लगाते हैं, और जब 15-16 साल होते हैं तो माँ बाप के फोटो को निकालते हैं, फिर जिस लड़के लड़की से प्रेम होता है उसका लटका देते हैं, फिर जब वो लात मारती है और जब वो लात मारती है लड़ाई करती है तब उसका निकाल देते हैं, फिर बच्चे का लगा देते हैं, और बच्चा जब वो अपनी पत्नी के साथ चला जाता है तब कहते हैं अरे कहीं भैया वो हरे कृष्ण वाले एक कोई मूर्ति है भगवान की, दो क्या करेगा, बोला लॉकेट में लगाऊंगा। अरे पहले कहाँ हुआ, बोला 5-6 मटाई बस बदली है, अब ये आखिरी लगाऊंगा, इसके बाद नहीं बदलूंगा, यही काम की है, बाकी तो सारी मूर्तियां बस थोड़े थोड़े दिनों के बाद चली जाएगी, रहने वाली नहीं है। और सबने ये मूर्तियां बदल के देखी है, और भगवान हंसता है, मूर्ख तो इतना खर्चा बाहर क्यों कर रहा है, मैं अंदर बैठा हूं असली, तू बाहर नया लगा के क्यों दिखा रहा है दुनिया को कि मेरी दिल में ये है, अरे मैं हूं, मेरे को भुला के दूसरे को बिठा रहा है, कहां किसको बिठा रहे, मैं आसक्त का मतलब मेरे को हृदय में बिठा दो। मैं ये मन आधस्त्व, आधस्त्व का अर्थ है मन तेरा मेरे पास डिपॉजिट कर दो, क्योंकि तुमसे संभाला नहीं जाएगा, मेरा है तो मेरे पास आएगा। मैं आसक्त मन आपा योगम युन्यम, योगम युन्यम का मतलब योग का अभ्यास करना, लेकिन कौन सा, मुझसे वे मुझ में आसक्ति वाला योग। आसक्ति वाले योग में क्या करना पड़ेगा, मेरी सेवा में लगना पड़ेगा, मुझ में मन आसक्त करके मेरी सेवा में जो लगा है, बोला अपना इतना उसकी हिम्मत है कि तुम्हारी सेवा कर सके, बोलो नहीं, मद आश्रय मेरा शरण लेगा, जो मेरा शरण लेता है, आश्रय को निकाल देंगे, भगवान के आश्रय को, पूरा दशम स्कंद श्रीमद् भागवत का आश्रय विषय, आश्रय है भगवान सबका आश्रय है, उसका ही शरण लेना है। मद आश्रय मेरे शरणागत होकर मेरी सेवा करे, इसका अर्थ असल में क्या है, यह है भक्ति पर अर्थ। नहीं तो लोग क्या करते हैं, अपने मन से कोई काम करके फिर भगवान को अर्पण करते हैं, तो आश्रय काम का लिया, अर्पण भगवान को किया, तो वो कर्म योग हो गया। ये भगवान को अर्पण करके सेवा करते हैं, ये भक्ति हो गई। भक्ति में पहले अर्पित फिर काम करना है, तो सेवा करते हैं पहले अर्पण करके, संकल्प करके फिर सेवा करते, तो ये भक्ति की परिभाषा होगी। मैं आश्रय, और कहते अगर आपका आश्रय भी ले लें, आपका शरण भी ले लें, मन भी आप में लगाएं, आपको हृदय में भी बिठाएं,
आपकी सेवा भी करें, मिलेगा क्या? समग्रम सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बोला ऐसे किसी को मिला है जिसने आपका शरण लिया हो, आपके सब कुछ आपको अर्पण कर दिया हो? मिला क्यों नहीं? बलि महाराज की आज तक मैं चौकीदारी कर रहा हूं, उसने मुझे अर्पण कर दिया सब कुछ, तो मैं आज भी उसके दरवाजे के ऊपर चौकीदारी कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? बलि बैठा मेरा दर्शन करता है, अपने आप को दे देता हूं उसको, समग्रम सब कुछ मिल जाएगा। पता नहीं भगवान मिलेगा नहीं। अरे असंक्षम, अरे संशय मत करो, तुम घबराओ मत, तुम इसमें संशय मत करो, शक मत करो, डाउट मत करो, सब कुछ मिलेगा। बोलो कैसे मिलेगा? तब कहते हैं ये जानने के लिए एक साधन है, यथा ज्ञासी तत् सुनो, और वहां माम शब्द है, असंक्षम समग्रम माम, मेरे बारे में सारी जानकारी मिलेगी, मेरे बारे में मैं पूरी जानकारी मिलेगी, कोई संशय नहीं रहेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोला बैठ के सुनूं। उदाहरण कोई इसका? बोला रुक्मणी इसका उदाहरण है। रुक्मणी ने भगवान को देखा नहीं था, वो विदर्भ देश में अपने पिता भीष्मक के घर में रह रही थी। नारद आदि ऋषि आते थे और भगवान श्री कृष्ण के रूप रूप गुण लीला मधुर, उसके मुस्कान और भक्त रक्षकता और वृंदावन की लीलाओं का वर्णन करते थे, और ये सुनो, ये सुनकर रुक्मणी जी का मन आसक्त, उसका मन भगवान श्री कृष्ण में आसक्त हो गया। और फिर उसने कहा अब क्या करूं? बोला उसका शरण लेना चाहती हूं। बोला कैसे शरण लिया जाएगा भगवान का? बोला किसी भगवान के भक्त के माध्यम से भगवान को समाचार भेज दो। तो एक ब्राह्मण के साथ रुक्मणी जी ने द्वारका में भेज दिया ब्राह्मण को। ऐसे जब भगवान की कथा हम सुनते हैं तब भगवान में मन हमारा आसक्त होता है, तो गुरुजनों के पास जाके प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे को भगवान से मिला दो। तो ब्राह्मण ने जाके भगवान श्री कृष्ण को रुक्मणी का संदेश दिया, तो भगवान रुक्मणी ब्राह्मण के साथ आए। इसका मतलब है गुरुजनों के हृदय में भगवान पहले से बैठे होते हैं। कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पारो, तुम्हारी शक्ति आछे, तो आपकी शक्ति है। तो गुरु जी फिर क्या करेंगे? वो भगवान लाके देंगे। बोला फिर आपके लिए कोई परेशानी होगी, कोई घर वाले आपको रोकेंगे तो? बोला फिर तो बलात् अपहरण कर लेंगे, फिर तो उनके प्रेम से वो आपको उठा ही लेंगे, फिर दुनिया में भटकने नहीं देंगे। कितना रुक्मणी के लिए समस्या थी, विवाह कर लिया था शिशुपाल के साथ, रुक्मी उसके बड़े भाई ने जरासंध शिशुपाल दंडवकर विदुरत शालव सारे शत्रु सेना लेके खड़े थे, लेकिन सबके बीच में से भगवान रुक्मणी को ऐसे ले गए जैसे शेर अपना भाग भेड़ियों के बीच में से ले जाता है। तो यहां शरणों की परिभाषा का उदाहरण है देवक रुक्मणी माता जी। भगवान की केवल श्रवण किया था और मन भगवान में आसक्त हो गया। ऐसे भगवान का सुनने वाले केवल सुनने मात्र से, और सुनना क्या है? बोला सुनना साधन है, काय का भक्ति का अंग है एक, और दूसरा स्कंद श्रीमद् भागवत का भगवत प्राप्ति करने का साधन श्रवण है, और श्रवण प्रकोष्ठ पूरा दूसरा स्कंद में परीक्षित सुखदेव से श्रवण कर रहा है, नारद ब्रह्मा जी से श्रवण कर रहे हैं, ब्रह्मा जी नारायण से श्रवण कर रहे हैं। तो श्रवण के लिए पहले चाहिए श्रद्धा के साथ ध्यान, ध्यान पूर्वक श्रद्धा से सुनना। तो प्रभुपाद जी सुनने को क्या बोलते थे? हम्बुल ऑरल रिसेप्शन, निम्रता पूर्वक श्रद्धा के साथ
भगवान की वाणी को सुनना। मेरे ख्याल में समय समाप्ति की ओर पहुंचा है आके, तो भगवान को पाने के लिए भगवान की कथा का श्रवण सबसे प्रबल अंग है। प्रभुपाद जी कहते सोए हुए आदमी को भी जगाने के लिए आवाज देते हैं, तो श्रवण शक्तिशाली अंग है। श्रणो, प्रभुपाद जी का सारा तात्पर्य श्लोक में श्रणो शब्द के ऊपर है, श्रवण करना चाहिए भगवान का। तो आइए शाम को हम आगे इससे श्रवण करेंगे। अब यहां वाणी को विराम देते हैं। भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, पतित वावन जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, दाई गौर प्रेमानंदे।